नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है।
दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में कल उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैंपेन के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका रवाना होंगी। भारत ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हुआ। साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल कार्य मंत्री की संसदीय समिति ने बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से विकसित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका भारत से अभी 238 रन पीछे है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।